जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोलिए सभी लोग, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ जय गिरीवर धारी, जय गिरीवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन,
सबको बांट देना है।
जय यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जो भजन है इसको गा रहे हैं हम, ये तुलसी महारानी की महिमा के ऊपर है।
नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी, नमो नमः तुलसी महारानी। तुलसी महारानी मंद महारानी, नमो नमः। नमोरी नमोरी मैया नमो नारायणी, नमोरी नमोरी मैया नमो नारायणी। नमो नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी, जाको दर से पर से अघनासी। सभी लोग बोलिए, महिमा वेद पुराण बखानी, जाको पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसी पूर्ण तप किए धन्य तुलसी धन्य तुलसी पूर्ण तप किए श्री शालिग्राम महा पटरानी दीप नैवेद्य आरती फूलन किए बर खाबर खानी नमो नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो छप्पन भोग छत्तीस व्यंजन छप्पन भोग छत्तीस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी शिव सुक नारद और ब्रह्मादिक ढूंढत फिरत महामुनि महामुनि ज्ञानी ओ नमो नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमो चंद्रशेखर मैया तेरो यश गावे चंद्रशेखर मैया चंद्रशेखर मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमो नमोरी नमोरी मैया नमो नारायणी नमोरी 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 मैया नमो नारायणी नमो नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमो जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनम सलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बोलिए सब लोग, सब लोग दोनों हाथ जोड़िए, क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मतलब है मैं भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूं या करती हूं। तो नमस्कार कैसे किया जाता है बताइए, हाथ जोड़िए फिर सब लोग, क्योंकि भगवान की आज्ञा भी है ये माम नमस्कुरु, तो कम से कम इतनी देर के लिए तो जोड़ लें। सवेरे से शाम तक जोड़ा कि नहीं जोड़ा, और नीचे को नहीं कीजिएगा है, हाथ ऐसे जोड़ने चाहिए कोई इधर को ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे जोड़िएगा और प्रेम से बोलिएगा, पहले सुनना आप लोग और उसके बाद जोर से प्रेम से पीछे से बाद में बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वैसे तो भगवद गीता का सातवें अध्याय का तीसरा श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। लेकिन क्योंकि समय का अभाव होता है, हैं प्रभु अर्चित प्रभु, तो तुलसी महारानी जी के ऊपर ही बोल देते हैं, समय कम होता है ना फिर, इसलिए तो ये आधे घंटे में तो गर्म शुरू होता है इंसान। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता ना, तो आधे घंटा एक घंटे की थोड़ी, जब संसार की पिक्चर तीन घंटे में देख के आते हो तो भगवान की कथा आधा एक घंटा में कैसे पूरी हो सकती है। वो तो ब्रीफ में बहुत संक्षिप्त में बताना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये भजन जो दिया इसको आप अपने घर ले जाना सब लोग, ठीक है, कोई यहाँ ऐसे फोल्ड करके इधर उधर गिरा के नहीं जाएगा, प्रेम से इसको अपने घर ले जाइएगा। तो इसका अर्थ क्या है ध्यान से सुनिए, जो एक महीने से तुलसी जलदान चल रहा था, आज क्या हुआ तुलसी जी पर जलदान, मतलब जो स्पेशली दिन भर जो है ऊपर लोटे से तुलसी में जो जल दिया जाता था ना, क्योंकि सालिग्राम जी को भी जरूरत पड़ती थी, तुलसी और सालिग्राम जी दोनों को, ये विशेष रूप से गर्मी के दिन है इसमें। तो आप बोलोगे कि अगले महीने गर्मी का दिन नहीं है, तो हम लोग तो तुलसी जी को सवेरे दोपहर शाम तीन दफे जल देते ही हैं, लेकिन इस महीने विशेष रूप से लोटे की व्यवस्था करके, चांदी के लोटे की व्यवस्था करके तुलसी जी में लगातार जल दिया जाता था। तो वो जो है आज के दिन विराम हुआ इस साल का, वैसे अगले साल फिर शुरू होगा, तो भगवान की सेवा तो नित्य चलती है। तो इस भजन, ये जो भजन आपने सुना नहीं होगा लगभग, क्योंकि हम लोग जो गाते हैं तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तो ये भी है जो सालिग्राम जी के संग जो सेवा होती है उसमें ये भजन भी गाया जाता है, ये भी गौड़ीय वैष्णव का ही भजन है। हे तुलसी महारानी आपको मेरा नमस्कार है, हे वृंदे महारानी आपको मेरा नमस्कार है। अच्छा कुछ कुछ चीजें पीछे से दोहराना भी आप लोग हैं, अलीगढ़ का तालाब लगा के नहीं बैठना है, कुछ कुछ चीजें दोहराना। मैया जी आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। हे नारायणी आपको मेरा नमस्कार है। आपके दर्शन से तुलसी महारानी जी, एक मंगा देना प्रभु जी इधर थोड़ा एक टेबल में रख दें, आज के दिन तो बहुत जरूरी है उनके दर्शन। आपके दर्शन से व स्पर्श से जीव के तमाम पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। आपकी ऐसी महिमा का वेद और पुराण क्या करते हैं? बखान करते हैं। आपके पत्ते व कोमल कोमल मंजरी श्रीपति नारायण जी के श्री चरणों में लिपटी रहती हैं। हे तुलसी जी, आप धन्य हैं, आपने पूर्ण तपस्या की है जिससे आप सालिग्राम जी की पटरानी कहलाती हो। धूप दीप व नैवेद्य आपको अर्पण किए जाते हैं, आपकी आरती होती है तथा फूलों की वर्षा बरसाई जाती है। 56 भोग व 36 प्रकार के व्यंजन तुलसी के बिना भगवान ग्रहण नहीं करते। शिवजी महाराज, सुखदेव जी महाराज, नारद गोस्वामी जी तथा ब्रह्मा आदि महामुनि ज्ञानी आपको ढूंढते फिरते रहते हैं, कहां तुलसी होंगी। क्यों? क्योंकि तुलसी जहां है, तुलसी के जड़ में विष्णु जी निवास करते हैं, तुलसी के पत्तों में सभी प्रकार के देवता निवास करते हैं और तुलसी की छाया में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। इसलिए जो छाया, जो तुलसी की छाया आ गई तो उसको भी हम लांघते नहीं हैं, है नहीं? तो अद्भुत और समस्त तीर्थों की रज, जहां तुलसी के नीचे जो मिट्टी पाई जाती है, सारे तीर्थों की रज भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। तो जहां ऐसी स्थिति है तो भगवान तो वहीं मिलेंगे ना, तो इसलिए तुलसी जी की शरण ले लीजिए। कृष्ण वहीं पर हैं, कृष्ण कहीं दूर नहीं है, वो अपने प्रिय भक्तों के आसपास ही घूमते हैं, उनके इर्द गिर्द। अब जिनके बिना भोग ग्रहण नहीं करते, 36 व्यंजन, 56 भोग, ये जो इनको जो है भगवान क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी बताइए। तो इसीलिए हम लोगों के पास उतनी भक्ति नहीं है, तो हमें भक्तों का सहारा लेना है। ऐसा नहीं सोच लेना कि मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, अब मुझे हरिनाम दीक्षा मिल गई, ब्राह्मण दीक्षा मिल गई, मेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं, आश्रय लैया जेई तारे कृष्ण नाही तेजी, जो भक्तों का आश्रय लेके भजन करता है, क्योंकि भगवान कहते ना अहम तिष्ठामी, केवल श्लोक सुनना नहीं उसके भाव में जाना है, सबको पता है ये, ना अहम तिष्ठामी वैकुंठे योगिनाम च हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामी नारद। तो भगवान अपने भक्तों के पास में होते हैं। साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो अहम, साधु लोग मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूं। तो बताइए, भगवान इधर उधर नहीं मिलते हैं, भगवान तो साधुओं के पास मिलते हैं। इसीलिए हरि दुर्लभ नहीं है, हरि के जन दुर्लभ हैं। ये जो जितनी भी व्यवस्था की है ना, भगवान ने आके व्यवस्था नहीं करी, ये सभी भक्तों ने बनाया। पहले उन भक्तों के मन में ये बात आई, एक ऑडिटोरियम भी होगा, फिर उसको कैसे सजाना है, कैसे सीटें, फिर कैसे उसमें भगवान के कार्यक्रम होंगे, और किसी ना किसी वैष्णव से ही आपकी टकराहट होती है, तभी आप ये धोती कुर्ता लगाना सीखे, तभी आप ये तिलक लगाना सीखे, है नहीं? तो जो आश्रय लेके भजन करता है उसको भगवान कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि आश्रय में ही कृष्ण मिलते हैं। वैसे हमारे पास कोई शक्ति नहीं है ये छोड़ देना कि मैं डबल एमए किया हूं, मेरी 6 लाख की सैलरी थी, बाहर छोड़ के आ गया मैं, इससे कृष्ण नहीं मिलते हैं, जो आश्रय लेके वैष्णव का। और जो वैष्णव से प्रेम नहीं करता है, भक्तों से प्रेम नहीं करता है, वो भक्त चाहे फुल टाइम हो चाहे बाहर वाले हों, जो भक्तों को आंख का झाड़ देखता है, कृष्ण की आंख का झाड़ है वो व्यक्ति, कृष्ण उसको भी आंख का झाड़ मानते हैं। भले ही वो 64 माला करते हैं, बोले कि 64 माला हो रही है मेरी, भगवान उसको कभी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर यही बता रखा है कि 56 भोग 36 व्यंजन कौन है, भगवान जो है तुलसी के बिना ग्रहण ही नहीं करते हैं। सुखदेव जी, नारद मुनि जी, ब्रह्मा जी, ऐसे बड़े बड़े संत शिरोमणि, वो जो है तुलसी जी को ढूंढते फिरते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण जल्दी मिल जाएंगे, तुलसी की शरण। यहां तक कि राधा रानी की विस्तार है तुलसी जी, लेकिन फिर भी राधा रानी तुलसी जी की क्या करती है, बोलिए। तुलसी जी से ये पूछती हैं कि हे तुलसी महारानी, ये बताइए कि मेरी कृष्ण में और आसक्ति कैसे होगी, कृष्ण में मेरी और आसक्ति कैसे होगी। राधा रानी की ही विस्तार है तुलसी जी, राधा ने ही उनको बनाया, लेकिन फिर भी राधा रानी हम सब जीवों को शिक्षा देने के लिए। और सच में जैसे कोई व्यक्ति धनी होता है ना, तो उसकी लालसा और बढ़ते जाती है, वो एक फैक्ट्री खोलता है, दूसरी खोलता है, तीसरी, 10 और इस देश में, उस देश में, वो तो स्वर्ग लोक का प्रभाधान नहीं है, नहीं तो लोग स्वर्ग लोक भी चले जाते। ऐसे भी है यहाँ पर, स्वर्ग लोक भी एक फैक्ट्री खोल देते है कि नहीं, मिनरल वाटर की। एक धनी व्यक्ति जिस प्रकार से लोभी हो जाता है, तो भगवान का भक्त भी उसको जितनी भक्ति है उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है, और तो राधा रानी जो है तुलसी महारानी जी की बहुत सुंदर, ध्यान से सुनिएगा। तो तुलसी देवी जी कौन है? भगवान कृष्ण की महान भक्त हैं, लेकिन क्या उन्हें इतना महान बनाता है? क्यों इस्कान के हर मंदिर में, हर वैष्णव मंदिरों में उनकी पूजा होती है? उन्होंने इस तरह पूजनीय होने के लिए क्या किया? उनका क्या विशेष स्थान है? इसलिए कहा भी गया है ना कि साधु संतों में भी कभी कभी भेद होते हैं। जैसे मायावादी लोग हैं, जो लोग ब्रह्मवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, और जो लोग जैनी लोग हैं वो भगवान का अर्चा विग्रह को नहीं मानते हैं, उनमें भी भेद हैं। है साधु की दृष्टि से वो भी लगेगा तो सभी साधु हैं, लेकिन जो भगवान की बातों को नहीं मानते हैं वो भी साधु नहीं है, तो वो भी इतने फेमस नहीं है संसार में। तुलसी जी को, तुलसी महारानी जी को मायावादी भी रखता है, निराकारवादी भी रखता है, ये सब रखते हैं। तुलसी जी इतनी फेमस है उसको सब रखते हैं, वहां कोई भेद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तुलसी जी इतनी महान है और जहां तहां जित तित तुलसी जी दिखती हैं। तो और हमारे भारतवर्ष में तो तुलसी के बन ही हैं पूरे पूरे, समझ रहे नहीं? क्योंकि यहां भगवान का विशेष स्थान है। उन्होंने इस तरह पूजनीय होने के लिए क्या किया, उनका क्या विशेष स्थान है? तो स्कंध पुराण से ये घटना है। मैं तुलसी देवी को प्रणाम करता हूं जो कि तुरंत ही सारे पापों का, केवल देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये केवल बातों को बड़ा बनाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, अतिशयोक्ति नहीं है। क्या है? यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी जी की जो प्रदक्षिणा करता है, केवल ब्रह्म हत्यादि, यानी कानी मतलब जो जो भी पाप किए उसने, जैसे तैसे, जिस टाइप के, जिस वैरायटी के, और यहां तक की वैरायटी तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों की भी हत्या की है अगर, लेकिन अब वो छोड़ करके समर्पित हो जाता है, आश्रय ले लेता है। और तुलसी देवी जी की पग पग पर, एक एक पग जो रखते हैं हम तुलसी देवी जी के, तो बता रखा है ब्राह्मण हत्या का भी पाप जो है, प्रणस्तानी तानी प्रणसंती प्रदक्षिणा पदे पदे, पग पग में उसका नाश हो जाता है जो हमने किए हैं। तो आप कैसे मान सकते हो कि अब आपके जीवन में पाप बचे हैं? पाप करने की प्रवृत्ति जरूर बची है, टेंडेंसी, लेकिन भक्त लोग तो वैसे ही निष्पाप होते हैं। तुलसी के दर्शन करने, उनकी सेवा करने, उनको जल चढ़ाने, उनको छूने मात्र से कल्याण है। ये प्रतिदिन कर रहे हैं, हमें इसका रियलाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बद्ध जीव हैं। हमें मिल तो गई बहुत बड़ी चीज, लेकिन उसकी कदर नहीं है हमारे जीवन में। तो इसलिए कदर कैसे होगी जब महानता सुनेंगे? ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सिर्फ तुलसी को देखने और छूने मात्र से ही व्यक्ति को सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए अगर आप कभी चिंताग्रस्त हो, तुलसी जी के आगे बैठिए और क्या कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। विश्वास नहीं हो रहा है ना, प्रभु जी तुलसी तो हमारे आंगन में ही है, कहां मेरी चिंताएं दूर हुई है? नहीं, विश्वासम फलदायकम। आप आज से शुरू कीजिए ऐसा, अगर ना होए तो बोलिएगा, क्योंकि हम सारा भार अपने ऊपर ले रखे हैं, अपने को मास्टर समझते हैं, समझ रहे नहीं? हम क्या करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और साथ में हल भी ढूंढते हैं। भगवान बोलते हैं फिर मैं क्यों आऊं, खुद ही ढूंढ ले, 16 पास है ना, ज्यादा डिग्री हो, ज्यादा डिग्रियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं जरूर भगवान के आगे से, लेकिन फिर खुद ही प्रयास में लग जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं फिर मेरे को कहां, फिर मेरे पर विश्वास है तुमको, समझ रहे नहीं? तो ये जो है भगवान पर विश्वास सबसे बड़ी चीज है। तो देखने छूने मात्र से ही व्यक्ति की सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी को सिर्फ प्रणाम करने, पौधे में पानी डालने मात्र से ही व्यक्ति यमराज जी, जो कि पापियों को सजा देते हैं, उसके पास जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जितने घरों में तुलसी है, जो तुलसी का दर्शन कर रहे हैं, उनको जल चढ़ा रहे हैं, उनको छू रहे हैं, समझ रहे हैं? उन लोगों को यमराज जी नहीं ले जा सकते हैं, ये भगवान का वचन है, क्योंकि जो बोल दिया भगवान सत्य संकल्प भगवान है हमारे। तो कितनी बड़ी, देखिए हम लोग कहां कहां जाने से तुलसी महारानी की वजह से बच जाएंगे। लेकिन हां, कोई अंडा और मीट खा के तुलसी को घर में रखे तो तुलसी वहां नहीं टिक पाएंगी, सूख जाएंगी। तो तुलसी जी की केयर भी बहुत जरूरी है। गर्मी आ गई है, अगर ज्यादा तुलसी है ऊपर से शेड लगा देनी चाहिए, 4 खंभे ऐसे छोटे से खड़े करके ऊपर से शेड जाली वाला, ताकि हवा भी आती रहे और छाया भी रहे उनके लिए। उनको जल डालना चाहिए, और जो अगर एक ही तुलसी है तो उसको घर के अंदर ले आओ दिन में, क्योंकि बहुत धूप होती है, शाम को फिर बाहर रख दीजिए। ये सेवा का वो है, तुलसी महारानी जी की वैल्यू होनी चाहिए। आप स्टूल में बैठते हो तो तुलसी जी को भी थोड़ा ऊपर रख लीजिए, एकदम नीचे रखा हुआ है जहां इधर उधर गंदा है चारों तरफ, आप ऊपर बैठते हो, अपने को इतना महान समझते हैं हम, है कि नहीं। तो गीता भागवत जितने भी ये भगवान संबंधी चीजें हैं, इनको भी ऊपर रखिए, इज्जत से रखिए, साफ कपड़े के ऊपर रखिए, स्वच्छ बना के रखिए, यही भक्ति है, तभी भगवान हृदय में रहते हैं। आगे उनके पास जाने से, यमराज जी के पास अगर कोई तुलसी का पौधा उगाता है तो निश्चय रूप से ही भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है। और जब तुलसी के पत्ते भक्ति से भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो बड़ी सुंदर घटना कि राधा रानी ने कैसे तुलसी जी की सेवा की, ये ध्यान से सुनिए। यह बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी की एक सहेली थी चंद्र नाना, एक है चंद्र भामा, एक है सत्य भामा, एक है चंद्र नाना। तो चंद्र नाना इनका नाम है, स्कंद पुराण से घटना है ये। तो उन्होंने, जो चंद्र नाना है, गर्ग मुनि से उन्होंने ग्रंथों की सभी शास्त्रों को सुना था। अतः श्रीमती राधा रानी ने पूछा कि श्री कृष्ण को खुश करने और अच्छे भाग्य की प्राप्ति करने के लिए, गर्गाचार्य जी से पूछा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किस तरह की पूजा करनी चाहिए। समझ रहे हैं, राधा रानी के अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो करोड़ों करोड़ों समुद्र से भी ज्यादा है, लबालब भरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, और कृष्ण के प्रति प्रेम, और कृष्ण के प्रति। इसको कहते हैं भक्त। ऐसा नहीं कि अब 16 माला हो गई तो खत्म जी, विराम दे दें, भक्ति में विराम होता ही नहीं, भक्ति तो आनंद की चीज है। जहां आनंद आता है वहां व्यक्ति स्टॉप बोलो नहीं होता है। तो राधा रानी जो है, एक क्षण सोचने के बाद चंद्र नाना ने कहा, हे तुलसी देवी, हे राधा रानी, तुम तुलसी देवी की सेवा महान वरदान, अच्छा भाग्य, आशीर्वाद और व्यक्ति को श्री कृष्ण का साथ प्रदान करती है। तो राधा रानी को उन्होंने क्या बताया आगे, कैसे सेवा करना, तुलसी को देखना, स्पर्श करना, ऐसे स्पर्श करना, और स्मरण करना तुलसी देवी जी का, तुलसी देवी को सोचना, और उनकी कीर्ति बखान करना, जैसे हम लोगों ने तुलसी जी की महिमा गाई अभी, है नहीं, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उनको प्रसन्न करना, उनके आगे प्रणाम करना, नतमस्तक होना, प्रार्थना करना, उनका पौधा लगाना, पूजा करने की सलाह दी, इतनी चीज करने की सलाह दी। तो चंद्र नाना ने विश्वास दिलाया कि ऐसा करने से तुलसी राधा रानी की इच्छा पूरी करेंगी, उससे उन्हें हजारों युगों के पुण्यों का फल मिलेगा। और चंद्र नाना ने आगे कहा, जो तुलसी का पौधा लगाता है वह अपने परिवार को जन्म मृत्यु से मुक्त कराता है। अब ध्यान से सुनना, आप लोग बोलेंगे मेरे पीछे, जितनी भी शाखा बोलिए, अब तुलसी में शाखाएं कितनी है देखिए, एक एक कम से कम इसमें 150-200 शाखाएं होंगी, ऐसे छोटी छोटी शाखाएं, जितनी भी शाखा, उप शाखा और छोटी शाखाएं, बीज और फूल और मंजरियां तुलसी के पौधे पर होते हैं, और जितने भी पत्ते होते हैं, व्यक्ति उनकी सेवा करता है उसकी उतनी ही पीढ़ी और उसके परिवार के आगे की पीढ़ी भी हजारों कल्पों तक कृष्ण के आध्यात्मिक धाम में चले जाते हैं। हमने भागवत में इतना सुना था कि अगर कोई किसी का पुत्र अगर भक्त बन जाता है प्रहलाद महाराज जी के प्रसंग में, तो उसका त्रिसप्त भी 21 पीढ़ियों का 7 × 3 त्रिसप्त भी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। लेकिन यहां कितनी पीढ़ियां उद्धार हो गई, जितने पत्ते हैं, जितनी मंजरियां हैं, जितनी शाखाएं उपशाखाएं जिनकी वो सेवा कर रहा है, उतनों का उसका क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ये उद्धार होने का मतलब ये है वो धाम नहीं चले जाते सीधे, लेकिन वो उनको मनुष्य जीवन मिल जाता है और वो भक्ति मिल जाती है, और भक्ति करके फिर धाम तो जाएंगे ही जाएंगे, और अगर आप शुद्ध भक्त हो तो फिर धाम भी जा सकते हैं। ये भगवान का वचन है। आगे, जब कोई प्यार से श्री कृष्ण को एक तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे संसार के सभी पत्र पुष्पों को भेंट करने का फल मिल जाता है। आपको चमेली के फूल लाने की जरूरत नहीं, फिर समझ रहे नहीं है, तो लाना चाहिए। लेकिन बात बताई है, तुलसी देवी जी का एक नाम है पुष्पसार। जितने भी वैरायटी वैरायटी रजनीगंधा, चमेली, जूही, पुष्पा, बैजंती माला, ठीक है ना, हेम पुष्प, और क्या बोलते हैं, कमल, गंधमाधन के जब आप जाएंगे बद्रीनाथ से ऊपर तो वहां गंधमाधन पर्वत है, वहां के जो कमल हैं ऐसे कमल कहीं नहीं होते हैं, अद्भुत कमल। ऐसे करोड़ों कमलों को गंधमाधन से कोई लाए और उस करोड़ों कमल को क्या करे, भगवान को अर्पित करे, लेकिन कोई एक तुलसी दल लाके अर्पित कर दे, भगवान क्या बोलते हैं, तुलसी दल मात्रण में वहां बिक जाऊंगा, यहां नहीं बिकूंगा। तो समझ रहे हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान को तुलसी के दल ला करके सवेरे चढ़ाए हैं भगवान के, धन्यवाद। जिन्होंने आज तक तुलसी जी नहीं तोड़ के भगवान को लाए, निवेदन है कल सवेरे तोड़ के जरा ठाकुर जी के चरणों में रखना। लेकिन ये मत सोचना कि मैं देवी देवता के चरणों में रख दे कहीं जी, शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं, दुर्गा जी को तुलसी नहीं चढ़ती हैं, बल्कि शिव जी और दुर्गा जी भी तुलसी को भगवान को चढ़ाते हैं, राधा कृष्ण को, कृष्ण को, समझ रहे नहीं। तो कल जिन्होंने नहीं कभी तुलसी का दल, एक भी दल कभी भगवान को नहीं अर्पित किया, कल सवेरे कृपा करके, कल सवेरे, परसों सवेरे, जब भी हो, जितना हो सके तुलसी के दल पुजारियों को देने चाहिए, भगवान के चरणों पर डाल दीजिए मेरे से। उसका क्या फल मिलेगा, आप आपकी सोच से बाहर है। हमारी जो छोटी सी लोटे जैसी बुद्धि है ना, ये उसको उसका वर्णन करने में असमर्थ है। यही सब चीजें हमारे संग जाती हैं भक्ति में, जो किया हमने, जो सुना भगवान के बारे में, ये बैठ करके सुनने मात्र से आप पुण्यवान हो रहे हो। भगवद गीता को सुनने मात्र से, ये तुलसी जी की महिमा सुनने मात्र से, ये पुण्य से भी बढ़कर के है, ये भक्ति प्रदान करते हैं सीधे। और भक्ति की तुलना से तो, भक्ति की तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भक्ति का अर्थ है प्रेम, वो भी ठाकुर जी का प्रेम, तो किस पुण्य से उसका वर्णन करें बताइए। तो आप ऑलरेडी पुण्यवान हो गए हैं ये कथा सुन करके, भगवान का दर्शन करके, भक्तों का दर्शन करके, तुलसी महारानी जी का दर्शन करके। सब लोग प्रणाम कर लीजिए तुलसी महारानी जी। जो भगवान श्री कृष्ण की तुलसी के साथ पूजा करता है उसे पाप स्पर्श भी नहीं कर सकते, वैसे ही जैसे कमल की पत्ती को पानी स्पर्श नहीं कर सकता। यमराज जी के दूत उसके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, बार बार बोल रहे हैं इसको, अगेन अगेन, अविश्वास मत करना, जो अविश्वास करेगा इन बातों पर वो पाखंडी है, वही ढोंगी है, वही धूर्त है, वही बदमाश है, याद रखना। ये जो कठोर शब्द है ना चार्य, ये उसके लिए लागू होते हैं जिसको इस बात पर ऐसे ही बोल रहे हैं लगता है नहीं, तो उसको भगवान मिलने वाले नहीं है। तो जिस घर के मध्य में तुलसी का पौधा हो, आपने देखा होगा हमारे भारत में जब घर बनाए जाते थे तुलसी जी के लिए, ऊंचा बीच में होता है, आज भी गांव में आप देखिए तुलसी जी, मध्य में तुलसी का पौधा हो, अगर कोई तुलसी का पौधा लगाए, उसकी रक्षा करे, उसे पानी दे, उन्हें देखे, उन्हें स्पर्श करे, तुलसी उसके सारे पापों को, जो कि वह शरीर से, मन से और शब्द से करता है, उसे जला देती है। ये इनको इतनी शक्ति दे रखी है, समझ रहे हैं भगवान ने। और जिस पुष्कर की पवित्र नदी, गंगा की पवित्र नदी और भगवान की मूर्ति सिर्फ एक तुलसी के पत्ते पर होती है, बताइए, जब वेद इसमें वास कर रहे हैं, सब पत्तों में वेद वास कर रहे हैं, और जड़ में जो है भगवान विष्णु वास कर रहे हैं, छाया में लक्ष्मी जी वास कर रही हैं, आगे क्या कहें बताइए आप, सोच सकते हैं उनकी महिमा। तो इसीलिए हर घर में तुलसी होनी चाहिए, जिनकी नहीं है तुरंत लीजिए। तुलसी जी की बावड़ी बनाता है जो कुएं, उनको उनको जल देता है, लोगों को उकसाता है कि आप तुलसी के पौधे रखो घर पे, समझ रहे नहीं। उन सबको कृष्ण प्रेम मिलता है। आपको पता है सत्यभामा जी ने भी पिछले जन्म में तुलसी जी की बगीचा लगाया था और भगवान को पति रूप में इच्छा की थी, तो तुलसी और कार्तिक नियम व्रत सेवा में उन्होंने दीप दान किया था। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि हे सत्यभामा, तुमने मेरे मंदिर के आगे तुलसी का बगीचा लगाया था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर के आगे स्वर्ग का पारिजात पेड़ लगा दिया। पारिजात तो छोड़ दो, कल्प वृक्ष तक लगाया था गोलोक धाम का उनको खुश करने के लिए। और क्योंकि तुमने दीपदान किया था इसलिए मैं शाश्वत पति बन गया हूं तुम्हारा, पति बदलने का झंझट ही खत्म, एकमात्र पति बस, ठीक है कि नहीं। इसलिए मैं तुम्हारा पति बना क्योंकि तुमने ऐसी पूजा की थी। अशक्ता अवस्था में भी, शरीर छोड़ते वक्त भी तुम यमुना में स्नान करने गई थी, और इसीलिए इसलिए शरीर छोड़ने तक तुमने जो है ये नियम व्रत तोड़ा नहीं। नियम, नियम से प्रभु मिलते हैं। तो जो लोग माला कर रहे हैं कृपा करके अभी माला ना करें, एक समय में एक काम अपराध होता है, ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है। तो कथा के समय कथा सुने, माला के समय माला करें। तो अब जो है इतनी इतनी महिमा सुनाई राधा रानी को, तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गर्ग मुनि के निर्देशानुसार श्रीमती राधा रानी ने तुलसी देवी की सेवा करने की प्रतिज्ञा की। जब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, उन्होंने सेवा कर ली, तो उन्होंने क्या हुआ, बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। ये भी एक सीखना होता है जीवन में। हम तुलसी देवी जी की सेवा करते हैं, घर में प्रोग्राम करते हैं, ये सबको जो दीक्षा ले चुके हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, मुझे भी चाहिए कि मैं भी अपने घरों पर वैष्णवों को बुलाऊं। ऐसा नहीं कि आप ही को, केवल मैं बोलने के लिए हूं बस, हो गया। कभी अपने घर में किसी वैष्णवों को बुलाया नहीं, ठीक है कि नहीं। केवल वैष्णवों की निंदा सुन रहे, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, किसी ने कुछ नहीं किया भैया। सबके अंदर यहां गलतियां हैं, गलतियां होती नहीं तो यहां होते ही नहीं हम लोग, है नहीं। मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग हैं जो भक्तों को नहीं बुलाते हैं, हमारे कितने लोग वो बाहर के ब्राह्मणों को भोजन बना के देके आते हैं, और उनके पास भक्त होते हैं लेकिन उनको वो उनको देने के लिए, क्योंकि उनके लिए भावना नहीं है, क्योंकि भक्तों का गुणगान न सुन करके उनकी निंदा सुनते रहते हैं दिन रात। हो जो किया भी है कि नहीं भी किया कोई पता नहीं है, ऐसे निंदक लोगों का संग करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उनके माइंड जो है भक्तों से चिड़े रहता है। तो जहां भक्तों के लिए मनी नहीं है, भक्ति कैसे आ सकती है बताइए, इम्पॉसिबल। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें क्या किया, बहुत सा धन दान में दिया। और अगर कोई धन दान में देता है, कभी कभी क्या होता है, लोग प्रवचनों में बोलते हैं, नहीं नहीं जो घर आए उनको दक्षिणा मत देना। अरे भाई, ये भक्त 100 रुपए से 500 रुपए से क्या बोलते हैं, क्या अमीर बन जाएगा वो, उसकी कोठियां बन जाएंगी। और हम ऐसा भावी क्यों रखें, और ऐसा बोलना भी गलत है। भगवद गीता के 3 प्रकार के दान में जब वर्णन आता है तो 3 प्रकार के वहां पर यज्ञ भी बता रखे हैं, जिस यज्ञ में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण ना होता हो और जिसमें प्रसाद ना रखा गया हो और जिसमें पुरोहितों को दक्षिणा या दान ना दिया गया हो, चाहे वस्त्र दान हो जो भी हो, तो वो यज्ञ तामसिक कहलाता है। हम शास्त्रों की बातों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करके उनको नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, इससे हमारा उद्धार होता है, समझ रहे नहीं। सबको देना चाहिए, खुशी खुशी देना चाहिए, आनंद से देना चाहिए, भक्तों को भी देना चाहिए, दीक्षित भक्तों को भी देना चाहिए, हरिनाम दीक्षार्थियों को भी देना चाहिए, एक दूसरे को आदान प्रदान घर बुलाना चाहिए। क्या क्या बोलते हैं उसको, उपदेशामृत में श्लोक है, गुह्यम आख्याति प्रच्छति, लेकिन उससे पहले ददाति प्रतिग्रहणाति, एक दूसरे को देना भी है और लेना भी है, इससे प्रेम बढ़ता है। ये प्रेम की, ऐसा नहीं कि देने से प्रेम बढ़, वो प्रेम की बात होती है। हम भगवान के लिए, क्या भगवान को जरूरत है बताइए, सारी दुनिया को सब कुछ दे रहे हैं, उनको क्या जरूरत है आपके फूलों की, आपके फल की, है नहीं। आज शाम को सारी रेड़ियां फलों की खत्म हो गई, कल सवेरे फिर भर जाती है, उनके पास तो इतना है, लेकिन फिर भी वो देते हैं सबको, उनको जरूरत नहीं, लेकिन वो आपके प्रेम को देख रहे हैं। तो इसी प्रकार सारा खेल प्रेम और भावना का है। तो ये जो बातें हैं ना कि भक्तों को नहीं देना चाहिए, उन्हें सबको पता है, सबको देना चाहिए, मंदिर के लिए दान भी देना चाहिए, भक्तों को भी देना चाहिए। क्या हर्ज है, क्या हर्ज है, हमारा उद्धार कैसे होगा नहीं देंगे? और कोई भक्त बिगड़ता नहीं है 100 रुपए 500 रुपए से। फिर आगे का क्या नियम है वो मंदिर वाले जानते हैं, उनसे लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें देना है, ये बोलना है, शिक्षा देनी है ये। इससे किसी का बिगड़ नहीं जाता है, ठीक है कि नहीं? तो ये जो है ये शिक्षा ही गलत है। शास्त्रों की शिक्षा को एज इट इज बोलना चाहिए। ये प्रेम की बात है, ये उनका सम्मान की बात है। हाँ, जिसके पास नहीं है तो भक्त किसी को फोर्स करते नहीं, वो तो कोई कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि उनको तो पता है मेरे पास तो कृष्ण है, वो 100 रुपए 200 रुपए के 500 रुपए के लिए थोड़ी भक्त बने हैं। उनको तो सारे जहां का मालिक मिला हुआ है, वो तो ऐसे ही हर कार्य करने के लिए तैयार हैं। मेरे से लोग पूछते हैं, स्वामी जी प्रोग्राम का क्या लोगे? मैंने कहा मैं डिमांड वाला भक्त नहीं हूं, मैं सबसे यही बोलता हूं। शायद आप में से किसी ने कराया होगा तो सुना होगा ये बात मेरे से। मैं सबसे पहला ही शब्द बोलता हूं, मैंने कहा डिमांड वाले भक्त नहीं हम कि इतना दोगे तो प्रोग्राम में आएंगे। नहीं जी, बोले फिर। मैंने कहा आपका श्रद्धा होगा तो मंदिर के लिए दान दीजिएगा, है नहीं, और आने जाने का गाड़ी भेज दीजिएगा। नहीं भेजेंगे तो यहां से गाड़ी ले आएंगे, उसका पेमेंट कर देना, बस ये है, और कोई चार्ज नहीं है जी। और माइक जो लिखाएंगे माइक मंगवा लेना, बस, समझ रहे हैं? तो लोगों को डर नहीं रहना चाहिए इन चीजों में। दुनिया डॉक्टरों के घर भर रहे हैं हम लोग, है ना, लाखों रुपए, वहां कितने रुपए दे रहे हैं, दवाइयों का पैसा दे रहे हैं, उस साधु को 100 रुपए 500 रुपए देने में नानी मर जाती है, समझ रहे नहीं? वहां मना, स्पेशली मना, वहां मत दे, क्यों नहीं देना, जरूर देना, क्योंकि शास्त्र कहता है। तो तुलसी राधा रानी ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन कराया और उनको बहुत सा धन दान में दिया, वस्त्र दिए। तब आकाश से देवताओं ने अपने नगाड़े बजाए और अप्सराओं से नृत्य करना शुरू कर दिया। देवताओं ने तुलसी के मंदिर में फूलों की वर्षा की और चार भुजाओं वाली तुलसी जी, जो कि केशव की प्रिया हैं, प्रकट हुई और उनकी कमल की तरह आंखें थी। एक स्वर्ण का मुकुट पहना था उन्होंने, चमकदार कुंडल पहने, एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान थी। जब वो रथ धरती पर उतरा, तुलसी जी जो कि बैजंती माला पहने हुए थी, जिनकी सांपों जैसी लंबी चोटी पीले रंग के फूलों से ढकी थी, पूरा वर्णन कर रखा है तुलसी जी कैसी थी, मतलब उन्होंने राधा रानी को चुंबन किया और राधा रानी को गले लगाया। तुलसी ने राधा रानी से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति शाश्वत रूप से जीती जा चुकी है। ओ प्यारी, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को अच्छे से एक साधारण व्यक्ति की भांति निभाया। तुलसी महारानी जी जानती है मैं इनसे ही प्रकट हुई हूं और ये मेरी पूजा कर रहे हैं एक साधारण व्यक्ति की भांति। क्यों? मुझे कृष्ण जो है और प्रेम बढ़ जाए कृष्ण में, कृष्ण के सिवा मुझे एक सेकंड भी और कुछ याद आए नहीं। नंदलाल जी उठ जाइए, हरि बोल, उठाओ उनको, नंदलाल जी को। कहां हैं आप? गोलोक वृंदावन में। तो तुलसी जी को स्मरण कीजिए भैया। तो आगे क्या हुआ, अच्छे से एक साधारण व्यक्ति की भांति पूरी किया, अतः तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जिससे तुम्हारे दिल दिमाग इंद्रियों की तृप्ति होगी। भगवान कृष्ण तुम पर दया करेंगे और आप कितनी भाग्यशाली हो। तो राधा रानी तब नतमस्तक हुई और प्रार्थना की, क्या मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति पा सकती हूं? तुलसी ने उत्तर दिया, हां तुम पा सकती हो, जबकि भक्ति से लबालब भरी हुई है, महाभाव शिरोमणि है। देखिए, एक भक्त भगवान को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो एक नए भक्त की भी पूजा कर सकता है। उसको पता चले कोई नया भक्त बना है पीले वस्त्र में और उसकी पूजा करने से कृष्ण प्रेम बढ़ जाएगा, वो नए भक्त को भर देगा पूजा से, समझ रहे हैं? तो भक्त को पता चल जाए कि कैसे कृष्ण मिलेंगे मेरे, एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशितः। तो इस प्रकार से ऐसा कहकर तुलसी जी अंतर्धान हो गई। तब राजा वृषभानु की पुत्री राधा दिल से खुश होकर घर चली आई। जो कोई भी राधा रानी की इस कथा को सुनता है उसे ऐश्वर्य, वो गरीब नहीं रह सकता है, फिर ऐश्वर्य मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, उसका भाग्योदय हो जाएगा और जीवन का अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण का शाश्वत प्रेम भी उसको प्राप्त हो जाएगा। ये इस कथा को सुनने और सुनाने का फल है, केवल इतनी बात। तो अभी लास्ट में हम ये तुलसी कृष्ण प्रेयसी भी एक एक लाइन गाएंगे, और अगर हो सके तो अगरबत्ती और माचिस मंगा लेना, थोड़ा सा वो भी कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा देर। तो तुलसी जी के मैं थोड़ा नामों को याद दिला रहा हूं आपको, बाकी तो तुलसी के बारे में तो बहुत कुछ, अभी जन्म की घटना बताएंगे तो वृंदा देवी जी, वृंदावनी। अच्छा, आप लोग भी बोलिए हैं तुलसी देवी जी के नाम, बोलिए वृंदा देवी, वृंदावनी, पुष्पसार, पापनाशिनी, नंदिनी, कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण जीवनी, वैष्णवी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, भक्ति देवी। ये भक्ति देवी भी नाम लिख रखा है इसमें, भक्ति देवी अलग हैं ये जरूर है। कभी कभी बोलते हैं ना भक्ति देवी, मतलब जय मत बोलना, भक्ति देवी अलग हैं पता है, लेकिन भक्ति देवी का यहां का मतलब है आप भक्ति देती हैं, इसलिए जय भक्ति देवी, इस ये भाव है उसमें कहने का। तो उनका ये नाम भी है भक्ति देवी, सुरसा, ग्राम्या, सुलभा, बहुमंजरी, अपेत राक्षसी, गौरी, सुलघनी, देवदुंदुभी आदि नामों से जाने जाने वाले यह पुष्प सभी तरह से पवित्र है, परम पवित्र। तो इसलिए तुलसी देवी जी को चाय में डाल के मत पीजिएगा, ये ध्यान रखना। साबुन में डाल डाल करके तुलसी साबुन, ये बहुत बड़ा अपराध है। तुलसी देवी जी केवल भगवान के चरणों में चढ़ती हैं, भगवान को माला लगाई जाती हैं, जब उनके उनको चढ़ गई उसके बाद आप लेकर के उसको प्रसाद रूप में पा सकते हो। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर कर देता हूं, कहीं भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। अगर आप उसको ऐसे मरोड़ते हो तो भी तो अपराधी है, ऐसे गोली बनाते हो और गोली बना के सीधे, अब ऐसे किया फिर भी तो पिचकाया आपने। जब एक दफे प्रसाद बन गई तुलसी जी तो कहां जाएंगी, दांत में तो जाएंगी ना, कैसे निगलोगे पत्ते को बताओ, गले में अटक जाएगा। तो बी प्रैक्टिकल, तो फिर एक दफे प्रसाद बन जाती है तो उसको आप चबा सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें अपराध नहीं है। तुलसी देवी जी अपराध नहीं मानती हैं, क्योंकि यहां तुलसी देवी जी पत्ते रूप में हैं, वृक्ष रूप में हैं, समझ रहे नहीं। लेकिन भगवान धाम में तुलसी देवी जी इस रूप में भी हैं और साथ में उनका साक्षात रूप भी है, ये है। तो ये उनके केस बता रखा, भगवान जब उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम हम इस प्रकार से पूजी जाओगी और तुम्हारे बिना मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा और तुम्हारे जो बाल हैं वही इस संसार में पत्ते रूप में इस प्रकार से इस रूप में होंगे। और तुलसी का अर्थ है तुलसी, जो तुलना रहित, जिनके जिनका सौंदर्य, जिनका गुणगान, जिनकी तुलना में और कोई नहीं है। इसलिए वृक्षों में सार, पुष्पों में सार, सभी प्रकार के वृक्षों में तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा जो है क्या है बोलो, उसके बाद पीपल का और आंवले का नंबर आता है, ये ध्यान रखना, बट वृक्ष का नंबर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा तुलसी महारानी जी का। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, ये दोनों, ये भगवान कृष्ण के चरण कमल हैं, दो रेखाएं, सरलता से समझने के लिए, और ये तुलसी महारानी है। तो हम तुलसी महारानी जी को यहां ऊपर रखते हैं, ऊपर, धन्यवाद रूप जी, ठीक है कि नहीं। तो तुलसी जी को और किसी को नहीं चढ़ाया जाता है भगवान के अलावा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग जब माला भी करते हैं, बता रखा है कोई शरीर छोड़ते वक्त अगर उसको, इसलिए तुलसी दल भारत में दिया जाता है, मरने के बाद देते हैं, पहले दे दो ना, पहले से शुरू कर देना चाहिए भगवद गीता का पाठ भी। जो ही आदमी बिस्तरा पकड़े भगवद गीता का पाठ प्रतिदिन शुरू हो जाए फिर नरक नहीं जा सकता है वो, हर अध्याय का अलग अलग महत्व है। और तुलसी दल और जल उसको प्रतिदिन चरणामत भी पिलाना चाहिए, कथा सुनते रहे, हरिनाम सुनते रहे, ताकि पूरा मन भगवान में। और शरीर छोड़ने के बाद भी तुलसी जी के जो लकड़ी है, सूखी लकड़ी, अगर बाएं और दाहिने कंधे में रख के उसको जलाओगे तो बता रखा है वो सीधे विष्णु लोक जाता है, वो नरक नहीं जा सकता है। ये सब तुलसी जी की अत्यंत पवित्र, तो इनको ये चाय में डाल करके ये में डाल करके नहीं पीजिएगा, भगवान को ऑफर करने के बाद आप ले सकते हैं। और जो तुलसी के चार पांच दल प्रतिदिन लेता है भगवान के चरणामृत से, उसको कभी जीवन में कैंसर और ऐसे बड़े बड़े प्रकार के रोग नहीं होते हैं। और किसी को हो गए हैं, वो विश्वास से दवाई खाते रहे लेकिन साथ में विश्वास से भगवान का चरणामृत पिए, मैं गारंटी देता हूं जितना ज्यादा अगर थोड़ा विश्वास होगा तो 10 साल में मिट जाएगा रोग, और ज्यादा विश्वास होगा 1 साल में मिट जाएगा, और ज्यादा जितना ज्यादा भक्ति है आपके अंदर विश्वास है 6 महीने में आपका वो रोग दूर हो जाएगा गारंटी, और अगर बढ़िया से विश्वास है तो 1 हफ्ते में वो रोग हरिबोल हो जाएगा। लोग परेशान हो जाएंगे कि कहाँ है रोग, विश्वास की बात है। केवल 7 दिन चरणामृत पी ले मैं, मुझे याद है हिज ग्रेस देव की पुत्र प्रभु जी, उनको होश ही नहीं आया था, हम लोग मायापुर से भी आ गए थे, जब मायापुर से आए तो मैं 1-2 दफे गया तो अंदर मिलने नहीं दे रहे थे, तो एक दिन मैं जबरदस्ती, हमारा एक कंठ सुधारक बटी हमारे इसमें रहती है गला साफ करने वाला है, तो इसी में मैं चरणामृत भर के लेके गया खाली, तो जब लेके गए थे चरणामृत और तुलसी उपयुक्त, तो उनकी धर्मपत्नी जी ने बोला नहीं नहीं बिल्कुल मना कर रखा है, बिल्कुल मना, अगर वो यहां होते तो अभी खुद बोलते, मैं उनको माइक देता वो खुद बोलते देव के पुत्र प्रभु जी, तो उनकी पत्नी नहीं 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 नहीं, तो लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई, मैंने क्या किया उनका ना ये ऊपर खोल करके वो डाल दिया, प्रभु जी डॉक्टर वहीं थे वो ऐसे करने लगे, वो ये बोले क्या हो गया क्या हो गया क्या किया आपने, प्रभु जी मैंने आपको मना किया था, मैंने कहा शांत रहो ये तो हिल भी नहीं रहे थे, देखो इतना हिलने लग गए हिले, वो दिन है, अगले दिन डॉक्टर ने बोला उनको होश भी आ गया सब, इनको बाहर शिफ्ट किया जाएगा, और आज वो आज इतना वो, तो मैंने कहा ये तो चरणामृत का वो है सब प्रताप, कहीं भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो आप अपना इधर उधर का चीज छोड़ दीजिए, चरणामृत लीजिए भगवान का तुलसी युक्त, और वहां चुपचाप डॉक्टर जब चले जाए उसके बाद ऐसे करके पिला देना, हो गया, वो बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ बताया ही नहीं, आप पिला देना कुछ नहीं होगा। एक दफे मेरे पास एक व्यक्ति आया गौतम नगर से, हमारे गुरु भाई हैं हरेश विष्णु प्रभु, तो वो बोलते हैं प्रभु जी मेरे पत्नी का भाई जो है ना उसका टॉयलेट और पेशाब दोनों बंद, और 1 हफ्ता हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि वो शरीर छोड़ देगा, बस क्या करें। तो मैंने कहा 6 महीने से कहां थे आप बताओ, मरता क्या नहीं करता वो, लास्ट में भगवान के पास आते हैं लोग लास्ट में। तो मैंने कहा भगवान का दर्शन करो, ऐसी डिब्बी दी उसको, मैंने कहा चरणामृत लेके जाओ, क्या डेली कर सकते हो, मैंने कहा यहां से होते हुए, वहां तो जा ही रहे हो डेली, यहां से होते हुए चरणामृत और एक माला लेके जाओ उधर। उसने चरणामृत पिलाया क्या, डॉक्टर ने तो मना किया था, मैंने कहा वैसे ही पीछे से पिलाना बस बाद में जब चला जाए वो। उस एक दिन चरणामृत क्या पिलाया, उनका टॉयलेट पेशाब शुरू, वो आज घर में बैठा हुआ आनंद ले रहा है। तो ये साधारण नहीं है, हमें विश्वास होना चाहिए तुलसी जी और चरणामृत इतना, ठीक है। तो यहीं पर मैं विराम देता हूं, कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है जी। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, उसके बाद कुछ दिखाने जा रहे हैं, सबने बैठे रहना है, कुछ देखेंगे ठीक है। तब तक प्रभु जी आप लोग इसको सेट कर लीजिए जी जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वेरी गुड। जो तुलसी सूख जाती हैं, जब पेड़ सूख जाता है उसका क्या करना चाहिए, और समय बताइए कि तुलसी के पत्ते कब तोड़ने चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि तुलसी के जो दल हैं वो सवेरे सूरज निकलने के बाद और सूर्य छिपने से पहले, ये तुलसी के दल तोड़ने का विधान है। उस बीच में कभी भी तोड़ो आप, सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले। लेकिन द्वादशी के दिन तुलसी के दल नहीं तोड़ते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इतवार को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मूर्ख हैं वो, उनको बोलो इतवार को तेरे को भोजन नहीं देंगे तो कैसा लगेगा, समझ रहे नहीं। तो इतवार तो ये तो कहीं है ही नहीं शास्त्रों में, ये बात तो ये बता रखा है कि द्वादशी के दिन उनके दल नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन ये नहीं बता रखा कि द्वादशी के दिन उनको पानी नहीं चढ़ाना। पानी तो भोजन है, पानी तो उनको जल तो देंगे, जल भी सूर्य उदय बता रखा 5 बजे के बाद जल भी चढ़ा सकते हैं, और सूर्य अस्त होने के बाद जल ना चढ़ाए, पहले चढ़ा लें, ठीक है कि नहीं। लेकिन द्वादशी के दिन भी जल चढ़ाएं, इतवार के दिन भी जल चढ़ाएं, लेकिन केवल द्वादशी के दिन पत्ते नहीं तोड़ते, ये बात है। और तुलसी के जो तुलसी सूख जाती है, बता रखा है जहां साफ भूमि हो, जहां कोई मलमूत्र नहीं त्यागते हो, ऐसी जगह पीपल के वृक्ष के साइड में गड्ढा खोद करके वहां तुलसी जी को डाल देना चाहिए, ये है। और कहीं अगर बहाव में, जैसे आप हरिद्वार में हो, बहाव में गंगा जी हैं, फिर उसमें डाल सकते हैं। लेकिन हर जगह बहाव में होता नहीं है, अभी गंगा जल है ही नहीं इतना, तो इसलिए गड्ढा, ठीक जगह गड्ढा खोद करके, ये भगवान के फूल भी, जितनी फूल मालाएं हैं, बड़े बड़े गड्ढे, ठीक है कि नहीं, वो पीछे ऐसे हमारे अनेक मंदिरों में पीछे गड्ढे ही होते हैं, जैसे यहां तो बड़ा अच्छा पार्क है, ऊपर बड़े खोद करके उसमें डाल सकते हैं सारे, उसकी खाद भी बनती जाती है और सब होते जाता है जी। अभी यही तो बताया, इतवार को बिल्कुल तोड़ सकते हैं, इतवार को कोई विधान ही नहीं है, इतवार शब्द भूल जाइए, ये शास्त्रों में विधान ही नहीं है, ये ऐसे ही बोलते हैं ये कर्मकांडी पंडित लोग, इतवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं है। द्वादशी के दिन केवल पत्ते नहीं तोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि तुलसी देवी जी एकादशी को रात भर भगवान का कीर्तन करती हैं, रात्रि जागरण करती हैं, वो अगले दिन शयन करती हैं, हम उनको छेड़ते नहीं हैं, इसलिए बस जल जरूर देते हैं, ठीक है। और आपकी मर्जी, जितना आवश्यकता हो, जैसे गमला है, अब गमले में आप जो है क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हो, बहुत बड़ा जर्किन डाल दें, इतना नहीं चढ़ाना है, गमले के हिसाब से एक लोटा चढ़ाइए, फिर दोपहर में, क्योंकि पता है गर्मी के दिन है, सूख जाते थे, दोपहर में चढ़ा दीजिए और शाम को चढ़ा दीजिए, ऐसे जितनी आवश्यकता, अगर पूरा बगीचा है उस हिसाब से, और एकदम वो जो नल लगा करके जोर जोर से तुलसी को हिलाना नहीं चाहिए, तुलसी को ऐसे करके नहीं, प्रदक्षिणा करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा दूर से करें, है नहीं, और उनको आराम से पानी डालें, अगर उस नल से डालना ही है तो आराम से नल लगा दें, पूरे में चले जाएगा ऐसे करके, और नहीं तो एक वो कीटनाशक वो भी होता है स्प्रे जैसे ढंग से, उसमें भी भर के ऐसे ऐसे तुलसी जी को ऊपर पत्तों में भी डाल सकते हैं, इसे स्वच्छ करने के लिए, ठीक है जी। बोलिए प्रभु जी, उसका रहस्य क्या था? यही रहस्य है सारा, कि तुलसी भगवान जो हैं अपनी लीला में आनंद करने के लिए, आनंद के लिए दो बनते हैं, सबसे पहले तो राधा रानी का विस्तार करते हैं, फिर राधा रानी ही जो है आगे रुक्मणी लक्ष्मी ये सब, अरे राधा रानी की विस्तार है आगे तुलसी देवी जी, तो भगवान की जो सेवा करने के लिए भक्त कुछ भी विस्तार कर सकता है, तो राधा रानी ने भगवान को आनंद देने के लिए क्या किया है, अनेक चीजों का विस्तार किया है, ठीक है। और भगवान में वैरायटी है, भगवान कोई लिमिटेड कंपनी थोड़ी है, अनलिमिटेड कंपनी है। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो, कौन से दिन नहीं तोड़ना चाहिए, थोड़ा जोर से बोलो ना, ठीक है। लेडीज लोग माताएं मतलब बोलिए ना, आपके शब्द नहीं सुनाई दे रहे, मतलब माताएं तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, क्यों नहीं छूना चाहिए, क्या वो इंसान नहीं, वो आत्मा नहीं है? तो ये सब अपने मनमानी व्याख्याएं हैं, ये शास्त्र की बात नहीं है। हाँ, उन पांच दिनों में जो स्त्रियों को पांच दिन होते हैं, उन पांच दिनों में जो है तुलसी जी को ना छुएं, ना स्पर्श करें, ना प्रदक्षिणा करें, लेकिन उन पांच दिनों में माला जरूर करें, कथा जरूर सुने, और भगवान का दर्शन अगर किसी को करना ही है, मंदिर आना ही है, वैसे तो उन तीन चार दिनों मंदिर नहीं आना चाहिए, ये नियम है, लेकिन अगर कोई बोले कि ये तो हमारे शरीर का वृथा है, इसका मतलब भगवान को थोड़ी छोड़ देंगे, किसी को इतना प्रेम ही हो, जरूर आए मंदिर, लेकिन दूर से दर्शन करके प्रणाम करके फिर माला करते रहे, ये शास्त्र की बात है, आए मंदिर लेकिन सबको टच ना करे, पुजारियों को इधर उधर, दूर से दर्शन करे, प्रणाम करे, फिर माला करने लग जाए अपना, ठीक है कि नहीं, ये नियम है ना, कि अंदर ही आ गया वहां पूरा पूरा, सब में घुस रहे, सबको टच कर रहे, ये गलत बात है। क्या चीज? अर्पित तुलसी चाय में क्यों डालोगे, चाय पियोगे ही क्यों पहले तो, ठीक है कि नहीं। इतनी महान महानता तुलसी की सुनी और इतनी कंडम चीज में उसको डालेंगे आप, हाय 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 हाय। कोई बच्चों के लिए उसका काढ़ा नहीं बनाना, अगर आपको काढ़ा बनाना है तो मैं भी दिन रात काढ़ा पीता हूं, हम पीते हैं जिंजर टी, चाय पीने का शौकी है, पता है क्या करो आप, एक दिन करके देखना, पानी में एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, जितना आपने बनाना है उस हिसाब से, अगर आप समझ लो आप चार गिलास बना रहे हैं, एक लौंग डालना उसमें पीस करके, चार पांच काली मिर्च, नहीं तो ज्यादा मिर्ची लगेगी, काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक, हल्का सा सौंफ डाल देना, आप उसको पीजिए, आप ये चाय वाय सब भूल जाओगे सब। यही काढ़ा है। और अगर ज्यादा काढ़ा करना है तो थोड़ा अदरक ज्यादा डाल के उसको ज्यादा उमाल लो, उसमें चीनी भी डाल के आराम से चुस्कियां लेके पियो, डॉक्टर की ये सब गोलियां फोलियां खाने भी नहीं पड़ेंगे, सब बंद हो जाएगा। ठीक है। और जी आपका प्रश्न जी, तुलसी की माला पहनने की स्टेज। हाँ, तो आपका थोड़ा बोलने का तरीका अलग है। ये बोलिए कि तुलसी की माला कब पहन। ये स्टेज शुरू से ही है। वैसे तो क्या बोलते हैं, मतलब तुलसी जी से माला कब बना सकते हैं, क्या हरे में बना सकते हैं, सूखे में बनाएं, ये है। ठीक है कि नहीं। तो बेस्ट तुलसी जी की माला बता रखा है, जब सूख जाए तुलसी उसके बाद बनानी चाहिए। तुलसी जी में जब जीवन है तो तब जो है उसमें उनको उनकी माला नहीं बनती है, वो अपराध होता है। हमने बोला जब तुलसी जी सूख जाएं उसके बाद गड्ढे में दाब सकते हो, लेकिन जो लोग माला बनाते हैं वो लोग उसकी माला बनाएंगे, कंठी माला बनाएंगे, ये माला बनाएंगे, ये सब करेंगे। हाँ, तो प्रभु जी ठीक बात बोल रहे हैं। समय हो रहा है कि और लोगों को जो प्रश्न पूछना है तो बाद में पूछ लीजिएगा बाहर, क्योंकि प्रभु जी लोग कुछ दिखा रहे हैं। मैं विराम देता हूँ। ठीक है। तुलसी महारानी की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, बोलो तुलसी शालिग्राम जी की। जी एक एक ले लेता हूं। तुलसी माला पहन कब सकते हैं, जब आप प्याज लहसुन छोड़ दो, जब मीट मांस छोड़ दो, ठीक है कि नहीं, जब आप भद्र जीवन बिताने लगो तब पहनने लीजिए तुलसी माला। स्वच्छता, जब आप प्रतिदिन नहाते हो, कितने लोग नहाते भी नहीं हैं तो तुलसी माला पहन सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी एक मिनट कर लें आरती, एक मिनट कर ही लीजिए ना, जब कहा तो आप करिए प्लीज। मैं एक मिनट एक एक लाइन गाता हूँ ऐसे ही बिना मृदंग के। ठीक है, सब लोग आइएगा। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। बोलिए राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो
न प्रेयसी नमो नमः।
ये तुम्हारो शरण लय तारा वांछा पूर्ण है,
तुम्हारे शरण लय तारा वांछा पूर्ण है,
कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी,
कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी,
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो,
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो।
मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो बा,
विलास विलास कुंजे दियो बा,
नयन हे रिव सदा युगल रूप राशी,
नयन हे रिव सदा युगल रूप राशी,
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो,
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो।
यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो,
निवेदन धरो सखीर अनुगत करो,
सेवा अधिकारो दिए करो निज दासी,
सेवा अधिकार दिए कर निज दासी,
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो,
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो।
दीन कृष्ण दासे कह यही ये नमो रहो,
दीन कृष्ण दासे कह यही ये नमो रहो,
श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी,
श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी,
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो,
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो।
यानी कानी चो पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी चो, तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे,
यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च, तानि तानि प्रणशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे।
जय तुलसी महारानी की, जय देवी की।